नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। की थंडरडाल की एडोबी प्रीमियर प्रो फॉर डमीज डेस्कटॉप वीडियो संपादन सीखने के लिए लिखी गई आरंभिक स्तर की व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक फिल्म निर्माण को केवल कट लगाने की प्रक्रिया नहीं मानती, बल्कि फुटेज कैप्चर करने, सामग्री व्यवस्थित रखने, दृश्य और ध्वनि को संपादित करने, शीर्षक जोड़ने तथा तैयार वीडियो प्रकाशित करने वाली पूरी कार्यप्रणाली के रूप में प्रस्तुत करती है। डमीज श्रृंखला की शैली के अनुरूप इसमें सरल भाषा, चरणबद्ध निर्देश, उपयोगी संकेत, त्वरित संदर्भ सामग्री और सामान्य समस्याओं से बचने की सलाह पर जोर है। इसका केंद्र एडोबी प्रीमियर प्रो का इंटरफेस और उस इंटरफेस के भीतर संपादन निर्णयों को लागू करना है। इसलिए पुस्तक उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो पारिवारिक वीडियो, लघु वृत्तचित्र या व्यक्तिगत परियोजनाओं को व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहते हैं। यह उस समय के प्रीमियर प्रो संस्करण और पीसी आधारित वीडियो उत्पादन की तकनीकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, इसलिए आधुनिक संस्करणों के लिए इसके बटन और सेटिंग्स पूरी तरह समान नहीं माने जाने चाहिए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रीमियर प्रो इंटरफेस को संपादन कार्यप्रवाह से जोड़ना। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह एडोबी प्रीमियर प्रो के इंटरफेस को अलग अलग पैनलों और आदेशों की सूची की तरह नहीं सिखाती। इसका उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि प्रोजेक्ट बनाना, मीडिया देखना, क्लिप चुनना, टाइमलाइन पर रखना और परिणाम की समीक्षा करना एक निरंतर कार्यप्रवाह के हिस्से है। नए उपयोगकर्ता प्रायः सॉफ्टवेयर विंडो की अधिकता से भ्रमित होते हैं, क्योंकि एक ही समय पर स्रोत सामग्री, प्रोजेक्ट सामग्री, टाइमलाइन और पूर्वावलोकन दिखाई देते हैं। पुस्तक इस जटिलता को उत्पादन के अलग चरणों में बांटती है। पहले सामग्री को पहचानना और व्यवस्थित करना, फिर संपादन के लिए चयन करना और अंत में अनुक्रम में परिणाम देखना। यह दृष्टि उपयोगी है, क्योंकि संपादन में गति केवल शॉर्टकट जानने से नहीं आती, बल्कि सही जगह पर सही सामग्री और सही नियंत्रण उपलब्ध होने से आती है। इंटरफेस की यह बुनियादी समझ पाठक को अनावश्यक क्लिक, गलत अनुक्रम में काम करने और परियोजना के भीतर खो जाने से बचाती है। पुस्तक का व्यावहारिक मूल्य इसी में है कि वह सॉफ्टवेयर सीखने को वास्तविक वीडियो बनाने की प्रक्रिया के साथ रखती है। दूसरा, कैप्चर, आयात और क्लिप प्रबंधन की उत्पादन पूर्व तैयारी। अंडरडाल वीडियो संपादन की शुरुआत टाइमलाइन से नहीं, सामग्री की तैयारी से करते हैं। पुस्तक में फुटेज कैप्चर करना, वीडियो क्लिप आयात करना और उन्हें प्रोजेक्ट में संभालना महत्वपूर्ण चरण है। यह जोर उचित है, क्योंकि खराब तरीके से संग्रहित या अस्पष्ट नामों वाली सामग्री बाद के संपादन को धीमा और त्रुटिपूर्ण बना देती है। पाठक को यह समझ मिलता है कि कैमरे से प्राप्त फुटेज, स्थिर चित्र, ध्वनि और अन्य मीडिया को एक ही परियोजना में लाने के बाद उनकी पहचान और उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। यह प्रक्रिया संपादक को पहले से सोचने के लिए बाध्य करती है कि कौन सी सामग्री उपयोगी है और कौन सी केवल संग्रह है। पुस्तक पीसी आधारित उत्पादन स्टूडियो स्थापित करने के प्रसंग में हार्डवेयर और कार्यस्थल की भूमिका भी सामने रखती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर पाठक को पेशेवर स्टूडियो चाहिए, बल्कि यह कि वीडियो फाइलों, कैप्चर और संपादन के लिए प्रणालीगत तैयारी आवश्यक है। आज के कैमरा और फाइल आधारित कार्य प्रवाह बदल चुके हैं, फिर भी मीडिया को आयात करने से पहले व्यवस्थित करने का सिद्धांत स्थायी है। यही अनुशासन लंबे प्रोजेक्ट में सामग्री खोजने, संस्करण संभालने और संपादन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, टाइमलाइन संपादन के माध्यम से दृश्य संरचना और गति नियंत्रित करना। पुस्तक संपादन को क्लिपों को जोड़ने की साधारण तकनीक से आगे ले जाकर दृश्य सामग्री को समझने योग्य क्रम देने के काम के रूप में रखती है। टाइमलाइन पर क्लिप रखने, उनके आरंभ और अंत को समायोजित करने, अनावश्यक हिस्से हटाने और चुने हुए दृश्यों का क्रम तय करने से वीडियो का अर्थ बदलता है। किसी पारिवारिक वीडियो में इससे घटनाओं का स्पष्ट प्रवाह बनता है, जबकि एक वृत्तचित्र में यही प्रक्रिया विषय, प्रतिक्रिया और संदर्भ के बीच संबंध बना सकती है। पुस्तक की शुरुआती पाठकों के लिए उपयोगिता यह है कि वह जटिल फिल्म सिद्धांत का दावा किए बिना संपादन के ठोस नियंत्रणों को समझने योग्य चरणों में प्रस्तुत करती है। पाठक सीखता है कि हर उपलब्ध शॉट को शामिल करना आवश्यक नहीं है, चयन और संक्षेपण दर्शक का ध्यान बनाए रखने के लिए जरूरी है। साथ ही अनुक्रम को बार बार पूर्वावलोकन करना केवल तकनीकी जांच नहीं, लय की जांच भी है। क्या कट बहुत अचानक है या दृश्य आवश्यकता से लंबा है, और क्या अगला दृश्य पिछले दृश्य से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ता है, ये प्रश्न टाइमलाइन पर काम करते समय उभरते हैं। इस प्रकार पुस्तक तकनीकी संचालन और संपादकीय निर्णय के बीच एक व्यावहारिक पुल बनाती है। चौथा, प्रभाव, ऑडियो मिक्सिंग और शीर्षकों से प्रस्तुति को पूर्ण बनाना। वीडियो की प्रभावशीलता केवल चित्रों के क्रम से तय नहीं होती। पुस्तक विशेष प्रभावों, ऑडियो मिक्सिंग और शीर्षक स्क्रीन बनाने को अंतिम प्रस्तुति के जरूरी घटकों के रूप में शामिल करती है। प्रभावों का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती संपादक अक्सर उन्हें सजावट के रूप में अधिक उपयोग कर सकते हैं। मार्गदर्शिका का व्यावहारिक ढांचा यह संकेत देता है कि इन उपकरणों का उपयोग दृश्य परिवर्तन को स्पष्ट करने, सामग्री को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने या सूचना को पढ़ने योग्य बनाने के लिए होना चाहिए। इसी तरह ध्वनि पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अस्पष्ट संवाद, असंतुलित संगीत या असमान आवाज का स्तर अच्छे दृश्य संपादन को भी कमजोर कर सकता है। मिक्सिंग का बुनियादी उद्देश्य विभिन्न ध्वनि स्रोतों को इस तरह संतुलित करना है कि मुख्य जानकारी दबे नहीं। शीर्षक और टेक्स्ट दर्शक को नाम, स्थान, संदर्भ या आरंभिक सूचना दे सकते हैं, पर उनकी पठनीयता और समय निर्धारण मायने रखता है। पुस्तक इन सुविधाओं को फिल्म निर्माण के अलग अलग विभाग नहीं बनाती, बल्कि संपादन परियोजना के भीतर लागू होने वाले साधन बताती है। इससे पाठक समझता है कि तकनीकी विकल्पों की भरमार के बीच प्राथमिकता स्पष्टता, सुनने योग्य ध्वनि और सुसंगत प्रस्तुति को देनी चाहिए। अंत में, निर्यात और प्रकाशन को अंतिम तकनीकी निर्णय के रूप में समझना पुस्तक वीडियो उत्पादन के अंत में निर्यात और साझा करने की प्रक्रिया को शामिल करती है, जो इसे केवल संपादन सॉफ्टवेयर के परिचय से अधिक उपयोगी बनाती है। टाइमलाइन में परियोजना ठीक दिखाई देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दर्शक तक पहुंचने के लिए उसे उपयुक्त आउटपुट रूप में बदलना पड़ता है। निर्यात के दौरान वीडियो और ध्वनि की गुणवत्ता, फाइल का आकार तथा वितरण का माध्यम आपस में जुड़े निर्णय होते हैं। बहुत बड़ी फाइल साझा करना कठिन बना सकती है, जबकि अत्यधिक संपीड़न चित्र और ध्वनि की गुणवत्ता घटा सकता है। पुस्तक का व्यापक उत्पादन दृष्टिकोण पाठक को यह समझने में मदद करता है कि संपादन का लक्ष्य केवल कार्यक्षेत्र में अच्छा पूर्वावलोकन नहीं, बल्कि देखने योग्य अंतिम फिल्म है। प्रकाशन की जरूरत के अनुसार चुनाव बदल सकता है, जैसे निजी साझा करना, डिस्क के लिए तैयार करना या किसी डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध कराना। चूंकि पुस्तक पुराने तकनीकी परिवेश में लिखी गई है, आज के प्लेटफॉर्म, कोडेक और ऑनलाइन प्रकाशन विकल्प अलग हैं, फिर भी इसके मूल प्रश्न अब भी उपयोगी है। अंतिम दर्शक कौन है, वह वीडियो कहाँ देखेगा और उस माध्यम के लिए गुणवत्ता तथा फाइल आकार का संतुलन क्या होना चाहिए? यह विचार पाठक को निर्यात को बाद में सोचने वाली औपचारिकता मानने के बजाय परियोजना की शुरुआत से योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष में, एडोबी प्रीमियर प्रो फॉर डमीज उन आरंभिक उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है जो वीडियो संपादन सीखने के साथ एक पूरी परियोजना को आरंभ से अंत तक संभालना चाहते हैं। पारिवारिक आयोजनों के वीडियो बनाने वाले शौकिया रचनाकार, लघु वृत्त चित्र के शुरुआती निर्माता और प्रीमियर प्रो के पुराने परिवेश को समझने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। इसकी व्यावहारिक शक्ति विषयों के क्रम में है। यह स्टूडियो और मीडिया तैयारी से शुरू होकर आयात, क्लिप प्रबंधन, संपादन, ध्वनि, शीर्षक, प्रभाव और प्रकाशन तक पहुंचती है। अनेक सॉफ्टवेयर पुस्तिकाएं आदेशों और सुविधाओं की सूची देती है, जबकि यह पुस्तक उन सुविधाओं को उत्पादन के वास्तविक चरणों से जोड़ती है। डमीज शैली की सुलभ भाषा, संकेतों और त्वरित सहायता पर जोर उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो विस्तृत तकनीकी दस्तावेज पढ़कर सीखने में सहज नहीं है। फिर भी इसे आधुनिक प्रीमियर प्रो का अंतिम संदर्भ नहीं समझना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंटरफेस, फाइल प्रारूप, कैमरा कार्यप्रवाह और ऑनलाइन वितरण विकल्प इसके प्रकाशन के बाद काफी बदल चुके हैं, इसलिए आज के पाठक इसके स्क्रीन आधारित निर्देशों को वर्तमान आधिकारिक संसाधनों के साथ मिलाकर उपयोग करें। इसके बावजूद फुटेज को व्यवस्थित रखना, स्पष्ट अनुक्रम बनाना, ध्वनि को संतुलित करना और वितरण के अनुरूप निर्यात करना जैसे सिद्धांत स्थायी है। यही व्यापक परियोजना केंद्रित दृष्टि इसे केवल बटन सिखाने वाली पुस्तकों से अलग बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कीथ अंडरडाल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।